लड़के की हत्या अपने हाथ से की हुई और मां रोटी बना रही है, रो नहीं रही है कहीं गुरुदेव को बेरा ना पट जा, ज्ञान ना हो जा और ये भोजन नहीं पाओगे, हम पापी जीवों का उद्धार नहीं होगा। नेकी ने इतना रोटी बनाई, कति नहीं रोई, मन पर सिकन भी नहीं आन दी, अके महसूस भी ना हो जा। बनाकर रोटी उसको तीन दौड़ा में, यानी ये मिट्टी के बर्तन होते थे पहले, उनको दौड़े बोलते थे, जैसे आजकल ये पत्तल चल पड़ी ना, उसमें लोहे के मिट्टी के दौने होते थे, कसोरे से होते थे, कोली टाइप, उन तीन दौनों में वह सारी सब्जी बना, रोटी राटी बनाकर दर दी। कबीर साहब ने कहा कि इनको छह जगह कर दो, इसको प्रसाद बना के और सारे इकट्ठे खाएंगे, तीन वो गुरु शिष्य यानी कबीर साहब और कमाल और फरीद और तीन वो घर के सदस्य। तो समन कहने लगा, महाराज जी आप खाओ, हम तो बाद में खाएंगे। अग्नि भैया आज इकट्ठा ही भोजन खाना है। नहीं माने तो पांच दौनों में परोस दिया। कबीर साहब कहें इनको छह में कर दो। अब न्यू कहे कि लड़का नहीं है तो बात बिगड़गी, उन्हें चुप करके छह में कर दिया, और बैठ जाओ तुम भी सामने। वो भी बैठ के एक दौना खाली रह गया, वहां व्यक्ति नहीं था। कबीर साहब कहते हैं आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरों के संता के नितक सेम। सेव धर पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं गरहरा गर्दन के यो ओ सेव अकनाही। ओए होए होए, वो धड़ वो शीश उठकर अपने आप उस सेव की धड़ पर लग के और जीवित होकर बच्चा पंगत माह कर बैठ जाता है। उसके निशान भी नहीं था कि गर्दन कटे हुआ कि नहीं। बोल सतगुरुदेव की, बंदी छोड़ कबीर साहेब। तो मात पिता को शक हो गया कि ये सेव वही है या कोई और जादू का तो नहीं बन गया। उन्हें गर्दन से वो हटा के कपड़ा देखा, अंदर जाके देखा, वहां पर खून पड़ा हुआ था, लड़के की धड़ और शीश नहीं थी। चरणा में गिर कर फूट फूट कर उभरे, ए परवरदिगार आप कैसे आना हुआ, इस तुष जीव के ऊपर क्यों कर रहम किया। कहने लगा भाई आज के बाद तो एक नंबर का सेठ होगा इस नगर में, उसके बाद वो सम्मन एक नंबर का रहीस आदमी बन गया और उनकी मुक्ति भी बन गई। बोल सतगुरुदेव की जय, पंडित छोड़ महाराज की जय। तुम कर दो पल में पारे हो जा, रजा तेरी तुम ओ रजा तेरी महाराज हो जा, तेरी महाराज हो जा, रजा तेरी तुम कर दो पल। ए तुम कर जो पलम पार हो जा, रजा तेरी महाराज हो जा, मेरा हो जा, रजा तेरी तुम कर जो पल। काल कष्ट से जीव दुखी, सुन मन तुमरे त्रस आया कनु। काल कष्ट से जीव दुखी, सुन मन तुमरे त्रस आया कनु। सतलोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया कनु। सतलोक को त्याग कर सतगुरु इस काल लोक में आया कर। तपत शिला पे जीव जले थे, उनको देख दुख पाया कर। वाखो बहुई तकरार निरंजन गेल तिरीवा तकरार निरंजन गेल तिरी तुम कर दो पल में पार हो जा तुम कर दो पल में पार हो जा रज और जा तेरी महाराज हो जा मेर तेरी अज जिस पे रजा तेरी तुम कर दो तुम कर दो मैं पार हो प्रथम आए ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी समझाया कना विष्णु जी को शरण में लेके चरणों में लाया कना शिव शंकर को शिष्य बना के ये सोहम नाम सुनाया कना वाखो बहुई जयकार पहुंचे शिवपुरी थारी खूब हुई जयकार शिवपुरी तुम कर दो पल में पार हो जा तुम कर दो पल में पार हो जा और जा तेरी महाराज मेरे तेरी महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर दो तुम कर दो हो जा रजा लहर तारा में कमल के फूल पे बालक बन देख लाया कना नीरू नीमा गए नानको वहां जुलाहे न पाया कना कजी आए नाम धरन को नाम कबीर धरवाया कना तुम पूरण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरी तुम पूरण ब्रह्म करतार कबीर हरी तुम कर दो ओ जा रजा तेरी तुम कर दो पलम ओ मेरे तेरी महाराज जिस पे रजा तेरी तुम कर दो पलम मथुरापुरी में धर्म दास को आके आप चेताया कना कर्म कांड में उलझा प्राणी सत मार्ग दर्शाया कना एक ब्रह्मांड इक्कीस यू राज काल का न सुन के धड़का खाया कना तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी तुम कर दो पलम तुम कर दो पलम पार हो जा ओ मेर तेरी महाराज जिस पे रजा तेरी महाराज हो जा मेरे तेरी तुम कर दो ओ जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा बलख बुखार में संत कैद किए आक आप छुटवाए कना मेला पे ऊंट और महल सरा कही सुन के चक कर आए कना बंदी हो कैसे बिछाई तन तीन कोर खाए कना तुम नर से बन गए नारी ओ डाची रजरी तुम नर से नार ओ डाची रजरी तुम कर दो तुम कर दो पल में पार ओ मेर तेरी महाराज हो जा महाराज जिस पे मेरे तेरी तुम कर दो पल रामानंद योग में उलझे उस हो कर सुलझाए कना सुपत सुदर नीरु निम सुपत सुदर्शन पश को शरण में लेके अपने वचन निभाए कना नीरु निमा उसके मात पिता थे वो बेटा बन मुक्ता एक ना जीवा दत्ता की सुखी दार कर दी हरी भरी जीवा दत्ता की सुखी कर दी हरी भरी तुम कर दो ओ जा रजा तेरी तुम कर दो ओ मेहर तेरी महाराज हो जा रजा राज जिस पे रजा तेरी तुम्हें गरीब दास गए गऊ चरावण दूध के प्याले पिए कना छोड़ानी में ग्रंथ की रचना कर न्यारे भेद दिए कना राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कना दिया राम पाल ओ धार देख शबद जड़ी दिया राम पाल ओ देख शबद जड़ी तुम कर दो पल में पार तेरी तुम कर दो पल में पार ओ रजा तेरी महाराज हो जा थारी महाराज जिस पर रजा तेरी तुम कर दो पल सत साहिब। अब इसमें आपने सुना कि काल कष्ट से जीव दुखी सुन ये मन तुम्हरे तरस आया कना सतलोक ने त्याग के सतगुर इस काल लोक में आया कना तपत शला पे जीव जले थे उनको देख दुख पाया कना वहां खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी। अब आप सुनना ध्यान तो भगजनो आपने ज्ञान बहुत सुन रखा है क्योंकि भक्त आत्मा आत्म कल्याण के लिए ये सोचकर के कोई भी संत आता है सत्संग जरूर सुनना चाहिए बिल्कुल ठीक है। जब तक आप सत्संग में जाते रहिए जब तक सही संत आपको नहीं मिलेगा क्योंकि विचार सुनने से जानकारी होती है और जहां तक आपको ज्ञान होता है वो ज्ञान आपको सहयोग देगा सतगुरु कबीर साहब की इस सत भक्ति की तरफ अग्रसर होने में। बार बार मैं इन बातों को क्यों दोहरा रहा हूं क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूं आप नादान बच्चे हो अभी इस ज्ञान के बारे में आपको कति ज्ञान नहीं है आप बिल्कुल अनभिज्ञ हो इस मार्ग में। जैसे छोटा सा बालक होता है ना छोटा सा बच्चा वो पिताजी से पूछता है कि पिताजी या दादाजी ये क्या है। वो बच्चा कहता है बेटा ये माइक है। वो कहता है क्या ये माइक है। वो फिर कहता है क्या ये माइक है। वो फिर कहता है क्या, क्योंकि उसको जो पिताजी कह रहे हैं वह बात समझ में नहीं आ रही कि ये माइक है या नहीं है। और जब वो सियाना हो जाएगा एक बार ही कहेंगे बेटा ये माइक है, इसको उठाकर ला। वो माइक उठा क्या लाइए कि माइक है ये आपने मंगाया था। तो आज आप जो है एक क्या शब्द है आपके पास, मैं जो बता रहा हूं आपको ये लगेगा क्या ऐसा होगा, आपके नहीं जचेगी। फिर सुनना, इसको कई बार सुनने से आप सियाने बन जाओगे। और फिर मैं जो भी बात कहूंगा आपको सच होगी, क्योंकि ये शास्त्रों पर आधारित है। जो माइक पर मैं बोल रहा हूं इसका एक एक अक्षर का जवाब देना होता है। ऐसे नहीं कोई ऊट पटांग मार दे यहां का, एक भी शास्त्र से बाहर बात नहीं होगी। शास्त्र आपको मानने पड़ेंगे। शास्त्र ये भी है कबीर साहब की वाणी, कबीर सागर शब्दावली बीजक, और शास्त्र ये भी है गरीबदास जी ने ज्यों का तो वर्णन किया हुआ है, जिसमें रामायण महाभारत गीता भागवत और सतलोक की महिमा। और शास्त्र ये भी है गीता जी, वेद और पुराण, सुख सागर महाभारत रामायण, ये भी शास्त्र है। इन शास्त्रों के अंदर ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, और इनसे बाहर जो है वो अब बता रहा हूं, इनसे बाहर वो क्या चीज है वो बता रहा हूं आपको, कि आपने गीता जी में सुना है कि मैं काल हूं भाई और सब जीवों को खाता हूं। जब भगवान इसी बूंदी सकल में जिसने देखण ते कालजा दड़के और वो सबको खा रहा है, देवताओं को भी खा रहा है, ऋषियों को भी खा रहा है, और अर्जुन कह रहा भगवान आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो जो आपके गुणगान कर रहे हैं। वो कहता अर्जुन मैं ना छोड़ू एक ने, क्योंकि मैं काल सुबाई और सबको खाता हूं, और उस काल की आप पूजा कर रहे हो। काल हमें खावर उसी को पूजन, देवता उसके गुणगान करें और उसको भी बख्श नहीं रहे। वो काल कैसे खाता है, ये शरीर नहीं खाने का, ये तो खोखा है, कवर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के अंदर एक कारण शरीर है, एक महाकारण शरीर है, उसके अंदर एक कवल्य शरीर भी है, और उसके अंदर ये जीवात्मा का असली स्वरूप है। इस काल नरेंद्र ने जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है, सनातन भगवान जिसे कहते हैं, ब्रह्म जिसे कहते हैं, इसने के कर रखा, इस काल ने इस जीव का असली स्वरूप खत्म कर रखा है, इसके ऊपर ये कवर चढ़ा दिए। इसका असली स्वरूप है 16 सूर्य का प्रकाश, यानी इतनी रोशनी है इस जीवात्मा की, लेकिन इसके ऊपर अपनी जो कारीगरी थे इसने अपने वो सूक्ष्म शरीर में लाकर छोड़ दिया। उस सूक्ष्म शरीर को फिर कभी कुत्ते के शरीर में प्रवेश कर देता है, कभी गधी बना देता है, कभी गधा बना देता है, और ऐसे इसका सिस्टम चलता रहता है। ये 1,00,000 जीव खाता है रोजाना। एक भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज जी हमने ये नहीं बात समझ पाई कि जीव तो वामर बचाते हैं, वो मरता नहीं, ये खाता कैसे है। हाँ कैसे खाता, बिल्कुल सही है, जीव अमर है, ये मरता नहीं। इसके अंदर जो खोखे में, इस कवर में एक शरीर जीव है, और वो सूक्ष्म शरीर के अंदर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और ये जो इसके माध्यम से आटा, ये नमक मिठाई खाते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदी व्यसन देखते हैं, गंदे फिल्में देखते हैं, कुछ विचार करते हैं, इनका एक समावेश बन जाता है इस शरीर के अंदर। जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे मांस बन गया हड्डी की वृद्धि के लिए काम आया भोजन, और बाकी खून बना नाड़ियों की वृद्धि बनी, बाकी तवचा बनी, इसकी सारी व्यवस्था। उसके बाद एक और मैटर बनता है, जैसे इसमें खून न्यारा बनता है, वीर्य न्यारा बनता है, यानी और इसी प्रकार उनका भी एक और सूक्ष्म चीज बनती है। वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर जाकर वो वासना जो हम सारे वर्ष जन्म ये खट्टे मीठे पदार्थ खाकर इस शरीर के माध्यम से, तो उसके ऊपर एक लेपन बन जाता है। किसके ऊपर? सूक्ष्म शरीर के ऊपर। उस सूक्ष्म जब यह शरीर छूट जाता है, 1,00,000 जीव सीधे तपक शिला पर जाते हैं, उस निरंजन के लोक में जाते हैं। कहते हैं 13 दिन इस व्यक्ति जीव का मालूम नहीं होता ये कहां है, इसलिए इसकी को 13वीं बनाता है, कोई 17वीं बनाता है। उस 13 दिन के अंदर ये पहले तपक शिला पर भुना जाता है, उसके बाद फिर ये न्यारे न्यारे मंडलों में से गिरता पड़ता आता है। 13वें दिन ये धर्मराज के सामने होता है। 13वें दिन धर्मराज के सामने अपने कर्मों के लेखे जोखे को करा के अपने कर्म आधार पर ये नई दुनिया को चारी पकड़ जाता है। उस दिन इसकी 13वीं मनाई जाती है। ये वहां पर तपत शिला पर डाल दिया जाता है। वो पत्थर की टुकड़ी सबसे गर्म रहती है, इतनी टेम्परेचर वहां पर बहुत ज्यादा दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर लगी हुई वासनाओं को, उस मल को निकाल दिया जावे। ये वहां तड़प तड़प कर बेहोश हो जाता है। इसको याद भी नहीं रहता मैं कौन था और कहां था। जब ये उसमें से ऊपर का वो सारा माल निकल जाता है गंदा, जिसने वो निरंजन भगवान खाता है, 1,00,000 जीवों का जीव मरता नहीं पर मन से बुरी हालत हो जाती है। फिर ये आकर के अपना लेखा जोखा करा के 84 की ये दंड कर्म दंड ये अलग है, 1,00,000 जीवों का हार वो काल न्यारा करता है। एक समय की बात है, धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, हे कबीर भगवान, हे पूर्ण ब्रह्म, आप क्यों कैसे आना हो गया आपका इस गंदे लोक में? कहता है मैं के बताऊं भाई, ये सभी आत्माएं मेरी हैं, यहां पर जितनी भी जीव आत्मा ये मेरी हैं, ये सब सतलोक में रहती थी, ये इस काल के चुंगल में आ गई, इसने इनको बहका लिया, अट्रैक्शन कर ली अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लिया, ये नादान आत्मा अपनी मर्जी से इसके साथ आएगी, और अब इन्हें इनका सारी दुर्गति कर रखी है, किसी को कुत्ता बनाता है, किसी को सूर बना के बिस्टा खिलाता है, और मनुष्य जन्म में भी कोई जीव सुखी नहीं है, ना देवता सुखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है। तो कहते हैं फिर क्या हुआ मालिक, कि जब ये तपत शिला के ऊपर ये जीव जल रहे थे, वहां पर इनको भूना जा रहा था, ये रो रो कर पुकार रहे थे कि हे कोई भगवान है तो हमारी रक्षा करो, हे परमात्मा हम यहां क्यों कष्ट पा रहे हैं। उनके दुखों को सुन तब आई धर्मदास में उस स्थान पर आ गया जहां पर वह जीव जल रहे थे। जब मैं तपत शिला के सामने खड़ा हुआ तो उन जीवों की जलन बंद होगी, जो वह जल रहे थे उनको पीड़ा थी, पीड़ा बंद होगी और शांत होकर बैठ गए, और जब सामने मुझे देखा तो चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं भगवान आप कौन हो? कि मैं भगवान हूं भाई, मैं परमात्मा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। कहते हैं भगवान फिर हम यहां कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? कहा कि ये बिना कर्म का दंड है तुम्हें, ये बिना कर्म का दंड है। वो क्यों मालिक? कि तुम जिस भगवान की पूजा कर रहे थे उस काल की, जो गीता में कहता मैं काल हूं सबको खाऊंगा, उस काल ने तुम्हें यहां डाल रखा है अपना 1,00,000 जीवों का ये आहार प्रतिदिन करता है। उसमें पंडित लोग भी थे जो वेदों के ज्ञाता थे, वहां पर देवता लोग भी थे, उसमें लिख रखा देवताओं को भी खा रहा है तू, वो देवता भी थे और ऋषि भी थे, क्योंकि देवता भी मरते हैं उनका शरीर छूट जाता है, फिर उनको भी वहां भूना जाता है, एक बार यहां से भी जाते हैं, ये सब मिलाकर के 1,00,000 की रोज कोटा पूरा कर लेता वो कालबली, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है, जिसको सनातन भगवान कहते हैं। तो भी वहां जब मैं वहां पर आकर खड़ा हुआ तो मुझे मेरे चरणों में गिर जाते हैं, भगवान हमने बचा लो। वो कहता है कि जब मैं मृत मंडल में जाता हूं और तुम्हें कहता हूं कि तुम ये साधना कर रहे हो ये तुम्हें हानिकारक होगी, तुम काल की पूजा कर रहे हो, चाहे तुम ब्रह्मा की कर रहे हो, चाहे विष्णु की कर रहे हो, चाहे माता की कर रहे हो, चाहे शिव की कर रहे हो, ये काल की पूजा है, क्योंकि ये काल के नीचे हैं, ये काल के अंतर्गत आते हैं, इनकी पूजा करने से आप काल से बाहर नहीं हो सकते। ठीक है, इनकी पूजा से जितनी राहत होगी ये दे देंगे आपको, स्वर्ग भी दे देंगे, गुरु जैसी मुक्ति भी कर देंगे, लेकिन आपका छुटकारा पूर्ण होगा तो मेरी शरण में होगा। लेकिन उस समय तुम मानते नहीं मेरी बातों को, तुम वकील बन जाते हो इन शास्त्रों के ऊपर आरूढ़ होकर के हमारी बातों को नहीं सुनते। अब तुम्हें बेरा पट गया, ज्ञान हो गया, तो वो सभी कहते हैं भगवान हमने बचा लो, अब तो हमारे से गलती बन गई, ये परमात्मा हमारी रक्षा करो। कहने लगा ऐसे नहीं कर सकता, मैं वचनबद्ध हो चुका हूं इस काल के सामने, और तुम अपनी मर्जी से धोखा खाकर इसके साथ आए थे। एक काम करना, जब तुम मृत मंडल में जाओ और किसी भगवान को मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, बहन या भाई का, स्त्री या पुरुष को, उसमें मेरा कोई नुमाइंदा संत ये ऊठ पटांग बात बताता हुआ कहीं मिल जाना तो ना उससे लाभ जाके नाम ले लेना। नाम लेने के बाद फिर मैं जानू और यो काल जाने, तुम्हारे पास वो काल आ नहीं सकता, और फिर तुम्हें ये तपक चलाकर नहीं आना पड़ेगा जिसने मेरा नाम ले लिया। आपको 84 में नहीं जाना पड़ेगा, आपका मनुष्य शरीर होता रहेगा जब तक यहां से पार नहीं होगे। तो बोले जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे शब्द स्नेहा। तब मेरे इस नाम के शब्द के ऊपर जो गुरु जी हमारा नुमाइंदा संत देव है उस पर विश्वास कर लेना, उससे प्यार कर लेना, नाम से लग जाना, फिर मैं जानू और यू काल जाने, ये काल तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। तो उसने कहते भगवान अब हम क्या करें, अब तो तुम भाई ये खाएगा तुम्हें। इतने में वो काल निरंजन, वो बूंदी सकल का जो गीता में दिखावा समय विराट रूप, वो असली रूप में वहां रहता है, और गीता में लिखा अर्जुन इस रूप को मेरे को कोई नहीं देख सकता, ना वेदों की साधना से, ना यज्ञों से, ना कोई जप से, ना तप से, अर्थात किसी भी प्रकार से इस रूप को जो मैंने आज तुझे दिखा दिया इसको कोई नहीं देख सकता, किसी साधना से भी मेरे पास नहीं आ सकती, इसलिए उसको निराकार मान लिया। क्योंकि वहां ना ब्रह्मा जा सके, ना विष्णु जा सके, ना कोई साधना से उसके पास जा सकता, क्योंकि उसने बीच में ऐसा एक भयंकर एक लपटे छोड़ रखी है। 97 टाइम 97 बार भगवान शिव जी ने शंकर जी ने चेष्टा की अपने समाधि ऊपर चढ़ाने की, लेकिन वो प्रथम सुन में द्वितीय तीसरी सुन से वापस आ जाता है। इस काल का तीसरी सुन से ऊपरले सिरे पे इसका अपना लोक है। 97 बार शिव शंकर ध्याया माने योग मेडिटेशन किया इसने 97 टाइम, और भाई इस निरंजन का वो पार नहीं पाया, निरंजन तक भी नहीं पहुंच पाए। इतने में जब वो आता है उसको देखकर सब भयभीत हो जाती है, कहने लगे भाई यू है उतारा भगवान जिसने तुम पूजा करती और जिसको तुम कहते थे और गीता में पढ़ा करते, अब तुम्हें खानी तुम्हारा माल खाने आया था, पर इसने मेरी शक्ति से तुम यहां बैठे हो, इससे पहले तुम यहां से जा चुके होते, इसके पास में ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल है, वहीं से दबा देता है और तुम यहां से उछल जाते, तुम जाकर के वहां गिर जाते, ये बाद में इस माल में खाता आते, लेकिन ये मैं यहां बैठा हूं इसकी सिद्धि फेल है, इसने अपनी तरफ से जो रिमोट दबा दिया
से, तो उन्हें सोचा तुम जा चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि ये तुम्हारा भगवान से निराकार कहते हो। अब उनके वो जीव देख रहे हैं, और निरंजन कबीर साहब के ऊपर टूट के पड़ता है कि तुम मेरे लोक में क्यों आ गया। कबीर साहब को मारना चाहता है कि परमात्मा थी ये पूर्ण ब्रह्म अपनी शब्द की शक्ति से इसको मूर्छित कर दिया। जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पंख वो तड़प रहा होता है, ऐसे काल विवश होकर और कबीर साहब के चरणों में गिर जाता है। फिर माफी मांग लेता है और कहता है कि मेरे से अनजान पने में आपके साथ गुस्ताखी मैंने कर दी, आप मुझे माफ कर दो। कर दिया माफ, वो जीव वहां से उड़ा दी, वो चले गई। अब कहता है कबीर साहब से पूछता है काल के आप कहां जा रहे हो मालिक। मैं मृत मंडल में जाऊंगा, इन तीनों लोकों में तेरा तेरी पोल का दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि जिसकी तुम पूजा करे ना जान ये तुम्हें रोज खाएगा, 1,00,000 का आहार रोज करता है। तुम्हें असली भगवान का मालूम नहीं, सतलोक में रहता जो पूर्ण परमात्मा, जहां से ये निरंजन भी आया था, जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए थे और जहीं से तुम आए थे ये माता आई थी, उसकी पूजा करो। तो कहने लगा भगवान ठीक है, आप बेशक अपना मार्गदर्शन करना, पर मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे, अब करो कि वचनबद्ध हो जाओ। मेरे इस ब्रह्मांड में कुछ त्रुटि रह गई है, वो पूरी करवानी साहब। अकबर क्या मांगता है कि तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना। कहा कबीर साहब ने कि मैं अपना नाम सतनाम देकर और सार नाम देकर इन जीवों को वापस ले जाऊंगा अपना ज्ञान देकर। कहने लगे भगवान अपना ज्ञान देकर ले जाना, जबरदस्ती मत करना। आप अपना ज्ञान देना, मैं अपना ज्ञान दूंगा, आपके ज्ञान को स्वीकार कर लें वो आपके, और जो मेरे मेरी साधना पारूढ़ है वो मेरे, उनको मैं खाता रहूंगा, पैदा करता रहूंगा, मारता रहूंगा, कुत्ते गधे बनाता रहूंगा, और जो आपके ज्ञान को सुनकर और आपके शरण में आगे वो हमसे न्यारे हो जाएंगे, उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, और तीन युगों में जीव कम ले जाना मालिक, सतयुग त्रेता द्वापर माही, और तीनों युग जीव छोड़े जाए, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव हो जावे। चौथे युग में कितने जीव ले जाना भगवान। अच्छा भाई चलो, और क्या चाहता है कि मेरा जो अंश अवतार है, मेरा विष्णु अवतार जो है रामचंद्र बनकर जाएगा, उसकी सीता उठेगी पत्नी, और समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, आप वो पुल बनवाना, ये कृपा करना। अच्छा भाई फिर क्या दूसरा क्या मांगा कि एक मेरा अंश अवतार है कृष्ण, वो एक मंदिर बनवाना चाहोगा जगन्नाथ के नाम से, उस मंदिर को समुद्र नहीं बनने देगा, वो तोड़ा करेगा उसको। आप
भेजूंगा, काल बोलिया उनके पास कुछ सिद्धियां होंगी, उनके बोलने की शैली बहुत अच्छी होगी, और वही इन्हीं शास्त्रों का वो प्रचार किया करेंगे। और आप जाओ, आपका कोई हंस जागा ना, उससे पहले 12 संत इसे भेज दूंगा ब्रह्म इस पृथ्वी मंडल पर हर मजहब में, कि वो अपने अपने पंथ को मेरी ही गुणगान गाके और पूर्ण रूप से वो प्रफुल्लित कर पाओगे। आपका संत जाएगा जब आपके संत की कोई सुनेगा को नहीं। कहते हैं द्वादश पंथ द्वादश यम संसार पठाऊं, तुम्हारा नाम ले पंथ चलाऊं, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही अमरे मुख वो अंश में ही। प्रथम अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कबीर साहब कहने लगा भाई ठीक है, तू अपनी चाल चल ले, मैं अपनी चलूंगा। तो वहां से कबीर साहब चलकर कहां आ जाते हैं, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा तू वेद पढ़ते हो, अखां खूब पढ़ता हूं, इसमें क्या लिखा है कि एक निराकार भगवान है, ये निराकार ही भाग भगवान विष्णु है, उसी को विष्णु भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु पालन करता होता है, विष्णु पालन करता को विष्णु कहते हैं। विष्णु निरंजन भी है, विष्णु उसका पुत्र भी है, जैसे होम मिनिस्टर सेंटर में भी होता है, होम मिनिस्टर राज्य में भी होता है। और ये विष्णु जो है ये निराकार शक्ति है, और वो ओम मंत्र उसका जाप है, इसके जाप से उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, वो प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ब्रह्मा ने 4 युग तक समाधि लगाई थी, फिर भी उस निरंजन के दर्शन नहीं हुए थे। तो कबीर साहब ने कहा ये निराकार भगवान है ना, जिसे तुम निरंकार कहते हो, यही काल है, ये आकार में अपने निरंजन लोक में रहता है, 1,00,000 जीवों का रोज आहार करता है, और तुम जो पूजा करा बता रहे हो ये पूजा निरंजन ब्रह्म तक की है। मैं तुम्हें परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की पूजा और बताता हूं, तुम ये भी करना और ये भी करना। अच्छा जी, हमें मंजूर है। ब्रह्मा को कबीर साहब ने नाम दिया। आप ये सोचो कि कबीर साहब तो अभी 600 वर्ष पूर्व थे और ब्रह्मा तो बहुत आदि अनादि है। कबीर साहब 4 युगाम आए हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम था, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और अब कबीर नाम से आए हुए हैं, आए थे। तो ब्रह्मा ने उनकी बात को स्वीकार किया। वेदों के यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है, उसमें के लिख रखा है कि जिस परमात्मा से, अब चक्कर क्या पड़ रहा है कि ना तो हमने वेद पढ़ दिए किसी ने, ना तो ये शास्त्र आए, ये थारे सारे थे संस्कृत में। अब जिसने जैसे भी हमें बता दिया उसी तरह मंड गए, संस्कृत अपन आया नहीं करती, क्योंकि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, ये चंद लोग पढ़ा करते, वो अपनी गिटमट करके और सच्चाई न छुपा के और अपने हिसाब से सेटिंग कराया करते। 5वें अध्याय का 32वां श्लोक यजुर्वेद, इसमें लिखा है, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं, खोटे चन वाले जीवों के शत्रु व कांत परजय हैं, बंधन के शत्रु यानी बंधन काटने वाले, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं, बंदी छोड़ जो बंधन छुटवा दे, यानी बंधनों ने काट दे, इस काल ने अपने बंधन ला रखे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी 5 रस्से बांध रखे, ये लोहे के रस्से बांध रखे और दिखाई नहीं देते, इन बंधनों को कबीर साहब काट के और सतलोक ले जाते हैं। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार भगवान शिव जी से भी ना कटे। मैंने आज सवेरे बताया था, बेशक आप महसूस करते होगे कि ये भगवानों की बुराई करते हैं, मैं कति नहीं बुराई करता, आपको अवश्य लग रही होगी। भगवान शिवजी मोहवश अपनी पत्नी पार्वती के कंकाल ने लिए घूमता रहा 10,000 वर्ष तक, इस मोह में इतनी ताकत है, इतना गजब रस्सा बांध रखा है, और जहां आशा तहां बासा हुई। अगर हमारी यहां किसी प्राणी में मोह रह गया तो हम उसी के पास फिर दोबारा, चाहे कुत्ते रूप में आवे चाहे गधे रूप में आवे। जैसे आपने सुना होगा, एक ऋषि तपस्या करा करता वो वृक्ष के नीचे, एक हिरणी किसी शिकारी के डर से भागी जा रही थी, उसके सामने एक बच्चा पैदा करगी और आप भाग गई। वो जो ऋषि बैठा था उसके मन में दया आ गई, उसने वो हिरण पाल लिया और उसका उसमें मुंह बन गया। एक दिन वो हिरण का बच्चा, 2 दिन आया को नहीं, उसने रोटी भी नहीं खाई, उसमें इतनी ममता बन गई। 3रा दिन आया तो छाती से लगाए रखा, हफ्ते पाचे उसके प्राणांत हो गए। वो ऋषि मर गया तो उसके बाद उसकी आसार रह गई उस हिरण के बच्चे में, वो फिर हिरणी का पैदा हो गया और उस हिरण के लिए खेलता अंडा, यानी वहां मर हुआ ममता, उस मोह ने वहां उसको वहीं रख दिया और भक्ति फेल कर दी। ऐसे भगवान शिव के अंदर वो मोह शोक है और अपनी पत्नी के कंकाल ने लिए हुए फिरता रहा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से जब काटा, जब उसका पीछा छूटा, यानी इतना मोह इसके अंदर, इतना बंधन है, ये बंधन अपने भी नहीं काट पाए, आपके नहीं काल काटने देगा, इनके माध्यम से ये वो भगवान काटेगा जो सतलोक में रहता है, वो सतपुरुष कबीर भगवान है। इसमें लिख रहा क्या है, इसका असली मतलब है वो कबीर नाम का परमात्मा जो सतलोक में रहता है, वो बंधनों का शत्रु है। इसमें इसके अनुसार मैं आपको सुनाता हूं, खोटे चलन वालों जीवों का शत्रु कान परजय व बंधनों के शत्रु तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले, बंधन के शत्रु यानी बंधन काटने वाले, बंदी छोड़। बंदी छोड़ हमारे कौन है? कबीर भगवान, सत्पुरुष, पूर्ण ब्रह्म करने वाले हैं, विस्तार करने वाले हैं। प्रशंसनीय सेवा युक्त स्वयं शुद्ध है, सबको शोधने वाले, अच्छे प्रकार प्रकाशमान है, पदार्थों को अति सूक्ष्म, पवित्र और सभा में कल्याण करने वाले हैं, जैसे हर्षित और दूसरे के पदार्थ लेने वालों को मारने वाले हैं, जैसे होम के द्रव्यों को यथायोग व्यवहार में लाने वाले और सुख दुख को सहन करने और कराने वाले हैं, जैसे अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले और सत धाम युक्त है। वो बंदी छोड़ बंधनों के शत्रु उस सत धाम में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। ये यजुर्वेद बता रहा है, यजुर्वेद। इसमें पांचवें अध्याय का 32वां श्लोक अगर किसी ने सरलास कर रखा हो तो आप पढ़ लेना वहां पर। इसमें लिखा कि आप वो सत धाम युक्त है, यानी वो सतलोक में रहता है, वो भगवान, वो पूर्ण परमात्मा है, सत धाम युक्त है। वैसे उत्तम गुण के प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों के उपासना करने योग्य हैं। आप ही यानी वो सतलोक में रहने वाले पूर्ण परमात्मा, वो सतपुरुष कबीर भगवान, आप ही सभी जीवों के उपासना करने योग्य हैं, ऐसा हम मानते हैं, ये वेद बताता है। और गीता जी में लिखा उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, वो परमात्मा कितना आ गया भाई, जब भगवान पहला कह रहा है मेरी पूजा कर लो, उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, तेरा फिर जन्म मरण नहीं होगा, और उससे यह सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है, वही सभी जीवों का पालन करता, वो सभी जीवों का पैदा करने वाला, और वो सभी का रक्षक है, वहां जाने के बाद तेरी फिर जन्म मरण नहीं होगा। तो वो परमात्मा कबीर भगवान है, सतपुरुष है। उसके बाद ये विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी को भी समझाया, विष्णु सतोगुणी बहुत है, ध्यान से बात सुना और कबीर साहब से नाम ले लिया। ये आपने सारी ऊट पटांग बातें लगेंगी मेरी कि अच्छा महात्मा यू नौका कबीर साहब से शिव जी ने भी नाम ले लिया और विष्णु जी ने भी उपदेश ले लिया और ब्रह्मा जी ने भी बातों को मान लिया, हाँ नो की नो है, सच्चाई है ये। तो फिर शिव जी के पास आए, शिव जी भक्ति में बहुत उत्तम स्थान रखते हैं और बहुत दयालु देवता हैं। भगवान शिव ने भगवान कबीर साहब की बहुत पूजा की, बहुत सेवा की, आदर सत्कार बहुत सबसे ज्यादा किया, और फिर उनको भी यही बात बताई कि महादेव तुम काल के अधीन हो, ये काल तुम्हें नाच नचा रहा है, तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम्हें यहां से निकाल देंगे। उन्होंने भी नाम ले लिया। हम तीन स्टेज में नाम देते हैं। प्रथम स्टेज में देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना, जो आपने करनी चाहिए थी कर नहीं रहे, जो गीता के अनुसार है, जो शास्त्रों के अनुसार है, जो पार्वती ने मंत्र जाप किए थे, पांच नाम पार्वती को दिए थे भगवान शिव ने, वो पांच नाम हम आपको देंगे पहले, क्योंकि आप चौथी मुक्ति योग उससे बनोगे, आपकी बीए हो जाएगी। उसके बाद हम नाम देंगे आपको पारब्रह्म का, ये ब्रह्म तक की उपासना होगी आपकी, फिर हम पारब्रह्म का मंत्र देंगे, और फिर उस पारब्रह्म की जैसे आपने बीए करी फिर एमए बन गई आपकी, और फिर हम आपको तीसरा जो नाम देंगे सतना या सार नाम देंगे, उससे आपकी नौकरी लग जाएगी, अर्थात आपका काम बढ़ जाएगा, आपका छुटकारा होगा। कबीर साहब प्रथम स्टेज का मंत्र तीनों को देकर आ जाते हैं, दोबारा जाते हैं दूसरी स्टेज का नाम देने के लिए, तीनों मुकर जाते हैं, क्योंकि वो काल अंदर से सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को बदल देता है। तो भगवान ने सोचा कि अभी ये मानेंगे नहीं, फिर भी उनको कहा कि बच्चों ये जाप आप करते रहिए, ये मंत्र जाप करते रहिए, इनसे तुम्हारी भक्ति शक्ति बनी रहेगी और जो है ना तुम्हारे काम सुचारू बने रहेंगे। उसके बाद भगवान कबीर साहब जो है नीचे आते हैं इस पृथ्वी लोक पे, अपनी सब शक्ति से ऊपर से एक आकाश से प्रकाश का गोला आया, लहर तारा तालाब है बनारस के अंदर, उसमें बहुत पानी फैला हुआ था,
कमल के फूल खिले हुए थे, कमल के फूल का ऊपर आकर एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। ये कथा कल सुबह सुनाऊंगा। बोल सतगुरुदेव की जय। सत साहेब, जैसा कि कल के सत्संग में भक्तात्मा सुन रही थी कि कबीर साहब ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उपदेश दिया, गरीबदास जी महाराज कहते हैं हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। कबीर साहब ने शिव भगवान को सोहम मंत्र दे रखा है और वो कबीर भगवान की यानी गुरु रूप में पूजा करते हैं। जब कबीर साहब ने देखा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो काल में फिर दोबारा अपने प्रभुता में ले लिए, क्योंकि जैसे आप सत्संग सुनकर जाते हैं प्रथम बार कोई भक्त आत्मा आती है उसमें अवश्य कबीर साहब के बारे में एक विशेष कसक उत्पन्न होती है और ये ज्ञान काफी सत्य नजर आता है। घर जाते ही वो विचार बदलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहां पर वो काल निरंजन के प्रभाव उस मूल ज्ञान को समाप्त करके अपना स्थान बनाए रखता है। ऐसे ही उनके साथ हुआ। जब सतगुरु ने यथार्थता बताई उस समय सतगुरु वहां पर थे, काल नहीं था, तो जो बताई बातें कबीर भगवान ने वो सारी की सारी ब्रह्मा विष्णु में इसको तीनों को अच्छी लगी और सत नजर आई। लेकिन साहब के आने के बाद वो काल वहां पर गुप्त रूप में पहुंच जाता है, मन में स्व उथल पुथल करता है और कहता है कि ये कुछ नहीं है, तो हमारे पास ये शक्ति है, तुम्हारे पास ये शक्ति है, काम संभालो, वो कर लो, ठाठम ठाठ, तो वो फिर विचलित हो गए। उसके बाद कबीर साहब ने यहां अमृत मंडल में आने का विचार किया। जब वो कलयुग में आए उसमें एक बनारस के अंदर, बनारस कहो काशी कहो वाराणसी कहो, इसके तीन नाम हैं भिन्न भिन्न, बनारस वाराणसी और काशी, ये तीन नाम एक ही शहर के हैं। तो काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब है। लहर तारा उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि काशी के साथ से गंगा बहती है। गंगा का पानी जब वो फुल होकर चला करती है दो तीन महीने, वो लहरों के द्वारा उछल उछल कर, वो तरंगों के द्वारा उछल कर वो पटड़ी पार करके वहां एक लंबा चौड़ा क्षेत्र पानी से झील सी थी वो भर जाता था। तारा उस क्षेत्र का नाम था, उस झील का, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। उसमें गंगा का निर्मल स्वच्छ जल भरा रहता था। उसी काशी के अंदर एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के पति पत्नी रहते थे, ब्राह्मण जाति से थे। वो भगवान शिव के बहुत उपासक थे और निस्वार्थ प्रचार किया करते थे। अन्य जो वहां के विद्वान ब्राह्मण पुरुष थे वो लोगों को स्वार्थवश अपना उल्लू सीधा किया करते थे। वो अपनी निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कथाएं किया करते थे भगवान की। काफी चर्चा के विषय बन गए थे। मुसलमानों को तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमने नादानी के कारण हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बहुत गहरी खाई बना रखी है, अज्ञानता के कारण बना रखी है। हिंदू मुस्लिम कोई नारे नहीं है, हिंदू कोई बाहर से ऊपर से नहीं आगे, वही पूर्वज सबके पीछे एक ही थे। तो मुसलमानों तो वैसे ही उनसे चिढ़ते थे और उस समय के वहां के जो ब्राह्मण लोग थे, वो भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे। इस बात का फायदा मुसलमानों ने उठाया कि इनके साथ ये पंडित लोग भी नहीं है और ये बात बहुत बनाते हैं, अपने धर्म का ज्यादा प्रचार करते हैं, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। कैसे बना दिया कि मुसलमानों ने अपना पानी लाकर उनके सारे घर में छिड़क दिया, उनके बर्तना में घेर दिया, उनके मुंह पर मार दिया और पिला भी दिया जबरदस्ती पकड़ का मुंह, क्योंकि वह तगड़े की चौगड़े का ठाट हुआ कर। तो इस बात का चाहिए तो था उन पंडित लोगों ने, हिंदुओं ने ये कहना कि भाई जबरदस्ती की गई है, तुम्हारी इच्छा नहीं थी और कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हैं और फिर नालो गंगा में क्या फर्क पड़ा ऐसा पानी छिड़े, पानी तो एक ही जैसा था। लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि तुम मुसलमान बन गए, आज से हम तुमको अपने भाईचारा से बाहर करते हैं, अपनी जाति से भिन्न करते हैं और गंगा में स्नान करना भी बंद करते हैं, आप गंगा में स्नान नहीं करोगे। गंगा केवल हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। अब उन्होंने क्या सोचा कि अच्छी बात फंसी है, तो हम सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, अच्छा गो में आते थे, भगवान का चिंतन बैठकर किया करते थे, ये तो बात बड़ी बिगड़ी, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और परमात्मा के चरणों में रो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपने घर पे खड्डी लगा ली और कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया कि भी कुछ रोजी तो करना ही पड़ेगा। पहले तो कथा कर देते थे, सवता कोई अपनी इच्छा से 10 रुपये दे जाता तो उसको भोजन में प्रयोग कर लेते थे और बाकी को ऐसे ही प्रचार में लगा दिया करते थे, उनका स्वभाव था ऐसा। जब उन्होंने देखा कि और साधन रहा नहीं तो उन्होंने अपना कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया, तो जी जिससे उनको जुलाहा कहने लगे, क्यों जैसा कोई काम करेगा उसको वैसे ही उसी नाम से पुकारा जाता है, उसकी वो जाति बन जाती है कर्म आधार पर। उन्होंने सुबह सुबह स्नान करना और भगवान का चिंतन करना नहीं छोड़ा था, उसके लिए उन्होंने सोचा कि गंगा में स्नान कराना हमारा वर्जित हो गया है, उसके लिए उन्होंने वो लहर तारा तालाब सिलेक्ट किया जो कि उनकी झोपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। दोनों पति पत्नी, उनके कोई संतान नहीं थी, आयु भी उनकी लगभग 40 वर्ष हो चुकी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, वो दोनों जने अपना भगवान के चिंतन में और जाते जाते ईश्वर चर्चा करते हुए लहर तारा तालाब में स्नान करके वापस आ जाते थे। एक दिन की बात है, जेठ उत्तरते की पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास जब समाप्त होता है, जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा माने पूर्ण महीना होता है, उस दिन जेठ पूर्ण हो रहा था, उस दिन वो जा रहे हैं स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। तो जब वो चले हैं और थोड़ा जल्दी चले तो वहां जाकर वह पहुंचते हैं, रास्ते में बातें कर रही है, उनका नाम नीरू और नीमा रख दिया, उनका मूल नाम गौरी शंकर और सरस्वती था, फिर उनका नाम नीरू और नीमा रख दिया। नीमा कहती जा रही है कि हमारे भाग्य में भगवान ने ये क्या किया, हम कैसे अभागी हैं, हमारे लोग दर्शन भी करना नहीं चाहते। कहते हैं तुम निसंतान हो और सुबह सुबह हमें दिखाई ना दिया करो, तुम्हारे दर्शन भी अशुभ है। ये हमारे समाज में एक ऐसी बुरी बीमारी यानी बुराई घर कर चुकी है कि लोग कहेंगे तो औलाद जो है इसका सुबेर सुबेर दर्शन ना करिए। और उन औलाद वाले ने किए थे तो बालक घड़े और भाई फिर उनकी ब्रैंड मटी हुआ है क्यों, उनकी कुमत उनको उनके बच्चों द्वारा कटवाया करे से। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी सेम्पथी होनी चाहिए उस व्यक्ति की के साथ, उसको कहना चाहिए कोई बात ना भाई, भगवान के घर में जैसा भी उसकी व्यवस्था है हमने ऐसे ही रहना चाहिए। जिनके संतान है वो कौन से विमान में बैठ कर जाओगे या कोई ज्यादा सुखी हो जाएंगे, या तो ऐसी बीमारी है जिसका संतान नहीं है वो दुखी और जिसका संतान से वो महादुखी। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग अपनी आख्या देखी, बात बताओ ऐसे ही किसी रिश्त कोई हमारा दोस्त था यानी, और उसका वो रिश्तेदार पड़े था। जब हमने ये नाम ले ही लिया था और कभी ऐसे ही कोई सत्संग होता था कहीं कहीं उसमें हम चले जाते थे, वो कहने लगा एक बार वहां होकर चलेंगे, हमारा रिश्तेदार है उसके वहां घर होके चलेंगे, उसको अधरंग मार गया है, रस्ते में ही पड़ा था, हम स्कूटर ले रखा था वहां, चलो उधर से निकल लेंगे। हम गए तो वहां पंचायत हो रही और वो बुढ़ा बोलिया जाको ना माड़ा माड़ा सा नो कह, अगर देखो रे मेरी रोटी भी भार होगी विन, चार लड़के उसके, आज मेरी रोटी भी भार होगी इन, इनका जो ना चार किले थे मैंने 16 किले बनाए, मेरे हड काले कर लिए, दिन रात लगा रहा, अरे इनकी इतने ठाठ से शादी करी। वो क्या था कि वो बूढ़ा जो है पहले बड्डे के मार रहा, तो एक महीने में वो बड्डे वाले भी सीख लिए, कह लगे भाई मेरे मारे बस का कोई ना, हमारे थे कि नारा दे रखा पिताजी ने भाई बाटे बाटे करो एक महीने इसकी सेवा, तो बाटे बाटे महीना महीना सेवा शुरू कर दी और महीने में भी छिक लिए, यानी उसकी कोई संभाल नहीं बने, दो दो दिन नहाए हो जा टट्टी माए पड़ी रहे उसकी, साफ करें को नहीं। आखिर में पंचायत हुई गांव की, उन्हें फैसला किया भाई या तो इसने संभाल लो और नहीं इसका तरीका ढूंढे, अगर तुम में ढूंढ लो इसका तरीका, क्यों ढूंढोगे कि इसके जम्मे जो है ना तारे 16 किले हैं, इस बुढ़े के से 3-3.5 किले हैं, हम उसको देंगे जो इसकी सेवा करेगा। इस बात के ऊपर जो तीसरे नंबर का बेटा था वो राजी हो गया, ठीक है हम कर देंगे सेवा। उन 3.5 किले के लालच में पिताजी की सेवा स्वीकार की गई। 6 महीने में उन ने भी हाथ जोड़ लिए कि इन किले ने भी किसी ने दे दो और मारे उसका कोई ना। उस समय उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे, वो भी बुला रखा था साथ में जो मेरे साथ जिसने जाना था। तो उसमें क्या फैसला किया गया कि अभी 3.5 किले पंचायत को होगी और ये उसको नौकर छोड़ देंगे इसके ऊपर। तो उसके बाद और भी शाने थे, उन्होंने बोला भाई नो तो बात नहीं बनेगी, वो लड़के नारे नारे समझाए भाई थारी देख के मैं बात हुई है, तुम्हारा पिताजी है कुछ तो सोच लो। अब नो है लड़के स्वीकार कर ले तो उनकी पत्नी अकड़ पड़ जाए, क्यों नोवली नोवली हो तो तड़के निकल जाए, मैं संभालना तो मनना पड़ा सही हो, जिसकी स्वीकृति से के बनेगा। तो कहने का भाव यह है, मैं तो बोला भाई तू अपना फैसला कर ले, मैं चला मेरा तो कर्जा पैट गया धर्म देखो रोनता चला गया मैं सत्संग भाई देख करो मैं अरबूडा फेरे उन पोत्यान ग्रपड़े पड़े हो जा बेटियान को गहरे कर दियो पोत्या ही कसर रह रही उन लाडकर और उसकी रोटी नहीं मिल रही उसको नादान को हम इतने गिर रखे इस काल में। मैं तो वहां से चल पड़ा मैं मेरा अपनी देखा जाता है ये दो तीन चोट मेरे हृदय में तुरंत लाग गई जब मैं सत्संग में लगा जिससे और स्पीड पकड़ गया वो हरे तो मुंडा काम सारे तो भाई वो बेटियाले बने बैठे है। यही बात है कि जिनका नहीं है वो वैसे दुखी जिनका से वो महादुखी आप देख लेना। सुवर संबल से या 12 वर्ष विश्वास अंत चोट खाली गई टोटे डोडे बीच कपास। हम सभी अपनी संतान को उत्तम मानते हैं अपने बेटे ने कोई बुरा नहीं मानता। जिनके डक के मारे है ना वो भी अपने बेटे ने लको छपो गए ना मारा कुछ नहीं करता बिल्कुल ठीक से टट्टू ठीक से थारा कब तक छुपा रखोगे इस बुराइयों को। तो कहने का भाव मेरा ये है कि यहां अमूलो पत्तोसी करके अपना सेटिंग सी बना रहे हैं पर ठीक ठाक कुछ नहीं से ठीक है। तो दोगड़ी भगवान कबीर साहब का नाम उसके सरना में पड़ा रहना और जो हो रहा है वो प्रारंभ ही हो रहा है। अच्छे बच्चे हैं तो भी उनके संस्कार से निकम्मे हैं तो भी वो कर्महीन से तो वो अपने ऐसे ही भोगेंगे। ठीक है दुख में दुखी होना भी पड़े से पर नाम के ऊपर ज्यादा आस्था रखें इन बातों को विचार में ज्यादा रखें कि यहां कोई किसी का कोई नहीं। ये संसार ऐसा बताया जैसे एक तोता होता सुआ वो एक संभल के पेड़ संभल का पेड़ बहुत बढ़िया ऐसा लगता जैसे बड़ा फलदार वृक्ष होगा जब वो उगता है उसके ऊपर टकटकी बांध लेता है कि ये बड़ा फल होएगा इसके बड़े अच्छे फल लगेंगे मैं खाऊंगा। 12 वर्ष के बाद उसका फल आते हैं वो फल इतने अच्छे होते हैं जानो इसमें बहुत अच्छा खाने का फल है और अंत में वो पीले पीले भी हो जाते हैं और जब वो पीले हो जाते हैं परिपक्व हो जाते हैं तो वो तोता न सोचे भी न खा ले उसमें चौंच मारता है चौंच मारते उसमें कपास होती है रुई होती है उसके उसके जो है ना जो चौंच मारा क्यों खाने के लिए तो अच्छा जोड़ते महाराज ने जैसे किसी सब्जी में अच्छी चोखी मिर्च हो और खान लग खाने लगे जब तो आदमी पूरी ठोक उसमें इतनी सारी और जब वो भीतर जाले जब ऊपर न मुंह करा है फिर पानी पियो ऐसे उसने मुश्किल हो जाती है क्या तो बात बिगड़ेगी। ऐसे जब वो चौंच मारी ना खाने की दृष्टि से अच्छी गाइड के लिए और वो जो उस रुई थी उसके अंदर फंसी चौंच में उसने जान बचानी मुश्किल होगी। तो यहां कहते हैं सुवा संबल से ही या 12 वर्ष विश्वास अंत चोट खा ली गई व डोडे बीच कपास। तो ये ऐसा संभल कैसा रूख ये संसार है हमने ये आस ला रखी बुढ़ापे में सुखी होंगे बच्चे सयाने हो जाएंगे इनका ब्याह कर देंगे अपना काम संभाल लेंगे। बच्चे सयाने होंगे इतने बूढ़ा मर लेगा क्यों उसके वह सेटिंग हो क्यों ना कदे बालक काम ठीक ना करें कदे नो नुकसान कर दे उड़े कुरड़े जा बैठा बैठा और मन मन गिल गिल जाले वो नौके जाएंगे आप घर रहो पर बेटा को नहीं जा तो ये समस्या उसका दोनों ही लागेगी। अच्छा बुढ़ापे में विशेषकर गांव में जो है ना बूढ़ा की ड्यूटी लागे और पाली जाएगी और बूढ़िया की लागे और पोतेर पोती खिलाएगी इवन कितना ही खिला ले पाओगी ना खेत में तो बहु और पोता रोनता पाएगा 36 मिनट डांट मारेगी तड़किया की रोनती होगी छोरे ने और चाहे कितना खिला रही हो और वो सूत बैठ जाए उसमें रोने का तो उसने जान मुश्किल हो जाए अगर बुढ़ी ने अगी करना के होगी। तो ये हमारे ऊपर ऐसी बाउंडेशन है जो हमें करनी भी पड़ रही है इनके बिना हम जा भी नहीं सकते क्योंकि ये हमारे बंधन बन गए हम अपने संस्कार में सुलझ गए इसका तरीका है। कहते हैं अनसाया में बहुत पसारा रे, एक मंत्र का सारा रे, इस वक्त एक नाम का ही हिसाब है। कबीरा ये तन जावेगा सकत उठा हर ला कै सेवा कर साधु की कह गोविंद के गुण का। जब नाम आप ले रखा होगा ना बच्चों को अपने पोतों को अपने देवताओं को, आप भगवान की कथा सुनाया करोगे उनको, उनको रोएंगे ना कथा से बनवाया करोगे, उनको प्रसन्न किया करोगे, और जब वो सो जाया करेगा अपना नाम जपया।